आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनविता कुमारी और हम पढ़ रहे थे आपकी पुस्तक का पाठ 5 जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। ये अज्ञेय जी का लिखा हुआ एक निबंध था बच्चों, जिसका हमने पढ़ा कि उन्होंने इसमें बताया कि एक लेखक जो है आखिर वो कोई भी रचना किस उद्देश्य के साथ करता है या उसके मन में ऐसे क्या विचार आते हैं जो वो कोई रचना करता है या उसका कुछ लिखने का मन करता है। अज्ञेय जी का पूरा नाम हमने पढ़ा था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो ये निबंध हमारा पूरा हो चुका था, आज हमें इसके प्रश्न उत्तर करने थे। तो आप लोग पेज नंबर 45 पर आ जाइए। यहाँ पेज नंबर 45 पे इसके प्रश्न उत्तर हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? तो हम क्या बताएंगे कि हाँ, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है जब जो घटना हो रही है या कोई चीज घटित हो रही है तो हम उसे देखते हैं, लेकिन अनुभूति क्या होती है? जो संवेदना या कल्पना से जुड़ी होती है, यानी हम उस चीज को, उस घटना को समझ पाते हैं, अपनी आत्मा से महसूस कर पाते हैं। इसी वजह से अगर हमने कुछ महसूस किया है तो उसे अगर हम उतार देते हैं तो जैसे का तैसा वो कागज पे आ जाता है और लेखक की जो आंतरिक विवशता होती है वह उससे मुक्त हो जाता है। ये जो अनुभूति होती है ना, ये जो आभास होता है, महसूस होता है जो लेखक को, यही वो चीज होती है जो किसी भी लेखक को या किसी कृतिकार को प्रेरित करती है कि वो लिखे। और दूसरी चीज, लेखक इसीलिए भी लिखता है क्योंकि वो जानना चाहता है खुद को, है ना, यानी खुद को जानने के लिए भी लेखक लिखता है। इसीलिए यहाँ पे लेखक ने अनुभूति को अधिक महत्व दिया है। ठीक है, प्रश्न 2 देखिए। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो हम क्या लिखेंगे, लेखक एक बार जापान की यात्रा पर गया था। वहां पे उन्होंने सड़कों पर एक पत्थर देखा, बड़ा सा, जिसपे मानव की छाया छपी हुई थी। ठीक है, मानव की छाया छपी हुई थी और लेखक क्योंकि विज्ञान के विद्यार्थी रहे थे, साइंस के स्टूडेंट यानी, तो उन्हें ये समझ में आ गया कि कोई व्यक्ति जो होगा वो विस्फोट के समय इस पत्थर के पास खड़ा होगा और विस्फोट से जो रेडियोधर्मी पदार्थ निकले होंगे उससे व्यक्ति तो भाप बन गया, लेकिन इस पत्थर को झुलसा गया और उसकी छाया इस पत्थर पर छप गई। ये जो अनुभूति उन्हें हुई, जो महसूस उन्होंने किया, उनकी आत्मा और हृदय इससे दहल गया। इस प्रकार लेखक ने कहा कि मुझे महसूस हुआ कि मैं स्वयं भी हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया हूँ, यानी वो जो दर्द है, वो जो विस्फोट है, मैं देख रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं खुद उस दृश्य से पीड़ित हो चुका हूँ। इसीलिए जब उन्होंने रचना की तो वो अनुभूति के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हुई। प्रश्न 3 देखिए। मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए। यहाँ आपको एक ही प्रश्न के दो भाग दिए गए हैं। पहला, लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं? इस पाठ के आधार पर आपको बताना है कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो आप लिखेंगे, लेखक अपनी आंतरिक विवशता के कारण कोई भी चीज लिखता है या लिखने के लिए प्रेरित होता है। उसकी अनुभूति उसे प्रेरित करती है कि वो लिखे और जो महसूस कर रहा है उसे बयान कर सके। तीसरी चीज, कोई भी कृतिकार या लेखक स्वयं को जानने के लिए भी लिखने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मुख्य रूप से तीन कारण बताने हैं कि लेखक पहली चीज अपनी आंतरिक व्यवस्था के कारण लिखता है, दूसरा उसकी जो अनुभूति होती है, जो आभास होता है वो उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है, तीसरी चीज कि वो स्वयं को जानना चाहता है, खुद को पहचानना चाहता है, इस वजह से भी वो लिखता है। और इसी का दूसरा भाग देखिए, खा, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को भी कुछ रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही चीज लिखेंगे कि किसी भी रचनाकार को जो उसकी आंतरिक व्यवस्था होती है, अंदरूनी व्यवस्था होती है, वही रचना करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन कई बार क्या होता है, उसे बाहरी दबाव भी झेलना पड़ता है, जैसे कोई संपादक उसे आग्रह करे, या फिर कोई प्रकाशक उसका आग्रह करे, या फिर उसको जीवनी की आवश्यकता हो, तो इस वजह से इन बाहरी दबावों से भी कई बार वो उत्साहित होकर लिख देता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो उसके प्रेरणा के दूसरे स्रोत बन जाते हैं। मुख्य स्रोत क्या है, लेखक की आंतरिक व्यवस्था, उसकी अनुभूति और स्वयं को पहचानने की लालसा, लेकिन बाहरी स्रोत भी हो सकते हैं, जैसे संपादक का आग्रह करना, प्रकाशक का आग्रह करना, या फिर उसको कुछ कमाई करनी हो, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी हो लिखने के द्वारा, तो ये सारी चीजें भी कई बार उसे लेखन करने के लिए प्रेरित कर देती हैं। प्रश्न चार देखिए, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति या स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये जैसे अभी हमने चर्चा की थी ना, उसी तरह का एक और प्रश्न है यहाँ पे कि रचनाकार को वैसे तो स्वयं की अनुभूति प्रभावित करती है, लेकिन ऐसे कौन से अनुभव हैं जो बाहर के भी उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि वैसे तो रचनाकार को स्वयं की अनुभूति ही प्रभावित करती है ना, उसकी हमेशा जो उसके अंदर की आत्मा की आवाज होती है या वो जो महसूस कर रहा होता है, वही चीज उसे लिखने के लिए प्रेरणा देती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये तो आंतरिक प्रेरणा हो गई, जो बाह्य दबाव होते हैं, जो हमें बाहर से दबाव डाल रहे होते हैं, जैसे लेखकों को संपादक आग्रह करते हैं कि आप कुछ लिख दें तो हम छापें, प्रकाशक उनका इंतजार देखते हैं कि इनका कुछ छपे तो हम उसे प्रकाशित कर सकें, या लेखक की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और वो आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ लिखना चाहे, है ना, कोई रचना करना चाहे, तो ये सारी चीजें भी उसे कई बार प्रेरित कर देती हैं। अब लेखक ने एक उदाहरण भी दिया था, जैसे वो कहता है कि आप सो रहे हैं और फिर आपकी आंख खुल जाती है, लेकिन आप इंतजार करते हैं कि कोई अलार्म बजे घड़ी का और तभी आप उठें, तो ये क्या हो जाता है, बाहरी दबाव। आंख तो खुल चुकी है ना, यानी आप बिस्तर छोड़ सकते हैं, आप उठ सकते हैं, लेकिन हम बाहरी दबाव का इंतजार करते हैं। बाहरी दबाव क्या हो गया यहाँ पे, घड़ी का अलार्म। तो ऐसे ही लेखक कहते हैं कि कुछ रचनाकार ऐसे भी हैं जो अपनी आंतरिक प्रेरणा से नहीं जागते हैं, बल्कि बाह्य दबाव के साथ ही लिखते हैं, जबकि वो स्वयं को ऐसा बताते हैं, अगर इसी उदाहरण के साथ जोड़े तो स्वयं को ऐसा बताते हैं कि अगर उनकी आंख खुल जाती है तो वो उठ जाते हैं, यानी अपनी आंतरिक प्रेरणा से जो मन करता है, जैसा मन करता है वो लिखते हैं, अपने भावों को अच्छे से अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन अगर बाह्य दबाव भी हो, यानी कोई संपादक आग्रह करे, है ना, यानी कि जैसे घड़ी का अलार्म भी बज जाए, तो उसमें भी उन्हें कोई हानि नहीं है कि उन्होंने उठना था, चाहे वो घड़ी के अलार्म से उठे या फिर खुद से आंख खुल जाए, पर उठे, ये महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए यहाँ पे लेखक ने बाह्य दबावों की चर्चा की है, है ना। प्रश्न पांच पढ़ते हैं, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं, कैसे? यानी यहाँ पे तो क्योंकि लेखन की बात चल रही है ना, मैं क्यों लिखता हूँ, लेखक या रचनाकार कैसे रचना करता है, इस बारे में बताया गया। तो अब ये पूछ रहे हैं, क्या जैसे इस क्षेत्र में बाहर से दबाव पड़ता है, संपादक का, जनता का, प्रकाशक का या लेखक की अपनी आर्थिक स्थिति, तो क्या ऐसे और भी क्षेत्र हो सकते हैं कला के या किसी भी तरीके के जो आपको प्रभावित करें कि आप जिस भी काम में हैं वो और बेहतर करें या फिर जबरदस्ती वो काम करें? तो आप लिखेंगे हाँ, ये जो बाह्य दबाव होते हैं वो लेखन के अलावा अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी अवश्य प्रभावित करते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? शुरुआत करेंगे पहले हाँ से कि हाँ हम ये अग्री करते हैं ना कि हाँ ये जो बाह्य दबाव होते हैं वो लेखन के अलावा अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी अवश्य ही प्रभावित करते हैं। जैसे जो अभिनेता है उसे उसका मंच जो है वो प्रभावित करता है ना, आंतरिक अनुभूति उन्हें भी होती होगी कि मुझे ये किरदार निभाना चाहिए या फिर ऐसे अभिनय करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा उनका जो मंच है, उनकी जनता की जो उनसे उम्मीद है कि कैसा अभिनय करेंगे या मंच पे इन्हें ऐसे रहना दिए, सहज रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी उन्हें प्रभावित करती हैं। इसके अलावा जो कलाकार होते हैं, जो नृत्य करते हैं ना, नृत्यकार जो होते हैं उन पर भी दबाव होता है। जैसे उन्हें निर्देशक का दबाव होता है कि वो उन्हें बताता है कि आप ये वाली मुद्राएं करेंगे, है ना, मुद्रा यानी ये वाले स्टेप्स करेंगे आप और इस गाने पे करेंगे या ऐसे, ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं। वहीं पे अब गायक और गायिकाओं की बात करें तो इन पे श्रोताओं का बहुत दबाव होता है, यानी जो गायक होते हैं वो अक्सर ये सोचते हैं कि जो हम गा रहे हैं वो हमारे श्रोताओं को यानी श्रोता यानी सुनने वाले को पसंद आएगा या नहीं आएगा। जो आयोजक हैं, जो हमारे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, उनको ये पसंद आएगा या नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें भी गायक या गायिका पे दबाव डालती हैं। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जो भी कलाकार होता है ना, वो अपने दर्शकों के लिए, श्रोतागणों के लिए, देखने सुनने वालों के लिए, जनता के लिए भी कार्य करते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें भी उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब अगर और क्षेत्रों की बात करें तो आ जाते हैं मूर्तिकार या चित्रकार, है ना, इनको क्या होता है, जो इनके ग्राहक होते हैं या इनके प्रशंसक होते हैं। प्रशंसक कौन हुए? जो तारीफ करता हो या जिसे आपकी चीज़ें, आपकी कला पसंद आती हो, है ना, जो प्रशंसा करता हो, तारीफ करता हो, या जिसको वही चीज़ पसंद आती हो जो आप बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं या मूर्ति गढ़ रहे हैं, तो उनका दबाव भी आपको अच्छा काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है कि इनको ऐसी चीज़ें मेरी पसंद आती हैं, अगर मैं ऐसी चीज़ें नहीं बनाऊंगा तो इनकी उम्मीदें टूट जाएंगी, है ना, तो आप उनकी इच्छाओं को ऊपर रखने के लिए भी अच्छा काम करते हैं कि जैसी वो इच्छा कर रहे हैं, जैसी उम्मीद कर रहे हैं वैसा ही काम मिले, है ना, अपने आप को बेहतर प्रदर्शित करने के लिए भी काम करते हैं। तो आखिरकार फिर इससे यही साबित होता है कि चाहे कला का कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन आंतरिक दबावों के साथ बाहरी दबाव भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आए, प्रश्न 6 देखिए। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? यानी जो कविता लेखक ने लिखी थी ना हिरोशिमा, वो उन्हें आंतरिक रूप से भी प्रेरणा मिली और बाह्य रूप से भी, इस बात को हमें समझाना है। तो फिर से हम वही बात बताएंगे कि लेखक एक बार जापान की यात्रा पर गए थे, वहां उन्होंने हिरोशिमा में विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखा, है ना, और देखा मतलब कि कितने साल तक स्थिति जो है वो अभी सुधर नहीं पाई है, लोग अभी तक उस विस्फोट का कष्ट सह रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वो देखी, उन्हें बुरा लगा, है ना, लेकिन जो उनका मन था, जो उनकी आत्मा थी, वो भी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाई थी कि वो कोई रचना करें या कुछ लिख दें। आपको बुरा लगता है, आपने घटना के बारे में सुना, लेकिन आप उसे ऐसे का तैसा कैसे उतार सकते हैं ना, वो चीज़ उन्हें प्रेरित नहीं कर पा रही थी कि वो अपने शब्दों को बयान कर सकें। फिर क्या हुआ, अब हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर उन्हें अनुभव तो हो गया कष्ट का, घटना का, कि कैसी घटना रही होगी, लेकिन जब उन्होंने, एक चीज होती है ना, एक घटना आपको एकदम अंदर तक हिला के रख देती है, वो घटना क्या हुई लेखक के जीवन में, कि जब उन्होंने देखा एक बड़े से पत्थर पर किसी व्यक्ति की छाया छपी हुई है ना, यानी परछाई जैसी, क्योंकि वो व्यक्ति तो विस्फोट में भाप बन के उड़ गया, पर उसकी छाया उस जले हुए झुलसे हुए पत्थर पर अभी तक जैसी की तैसी छपी हुई थी। तो ये जो विस्फोट का परिणाम था, ये जो उसका प्रभाव था, दुष्प्रभाव था, इससे देखकर लेखक को दर्द महसूस हुआ, है ना, उसे कष्ट की अनुभूति हुई, दर्द महसूस हुआ, और तब जाके संवेदनाओं ने जन्म लिया, है ना। आत्म अनुभूति होती है तो आपकी संवेदनाएं जाग जाती हैं, आपकी कल्पनाएं जाग जाती हैं, वही लेखक के साथ हुआ, और इसी ने लेखक को लिखने के लिए प्रेरित भी किया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हिरोशिमा पर लेखक ने कविता लिखी है वो उनके अंतः और बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। अंतः इसलिए क्यों, कहीं ना कहीं वो लिखना चाहते थे उस पे, है ना, अपने भावों को व्यक्त करना चाहते थे, अपने भावों को व्यक्त करना चाहते थे, लिखना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे तो लिख नहीं पा रहे थे। घटना तो उन्हें पता थी, अनुभव तो उनके पास थे, लेकिन अनुभूति हुई, जब महसूस किया उस दर्द को, तभी वो उस कविता को अच्छे से लिख पाए, और इसीलिए उस कविता को वो महत्वपूर्ण भी मानते हैं। वो कहते हैं इसे अच्छी या बुरी की कसौटी पे, है ना, अच्छी बुरी कैसी है कविता, इस कसौटी पे नहीं रख सकते, लेकिन महत्वपूर्ण उनके लिए बहुत है, उनकी कविता वो उनके लिए बहुत निकट है, है ना, उनके बहुत करीब है वो कविता। अगला देखिए, अब प्रश्न संख्या 7। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? हिरोशिमा की घटना में क्या था? अणु बम, यानी एटॉमिक बॉम्ब्स जिसे हम कहते हैं, वो अमेरिका ने जापान पे डाले थे और जिसकी वजह से इतने दुष्परिणाम हुए। तो वो कह रहे हैं कि ये विज्ञान की प्रगति के साथ हमने कुछ बुरी चीज़ें भी सीख ली हैं, है ना, जो चीज़ हमारी तरक्की के लिए, वो हम मानव का नुकसान करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे ही और भी क्या विज्ञान के दुरुपयोग हैं, विज्ञान को कैसे गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, यह आपको बताना है। तो शुरू करते हैं गाड़ियों से, क्योंकि आजकल देखिए, पहले पैदल जाता था इंसान, या फिर बैलगाड़ी बनी धीरे धीरे, है ना। अब क्या हुआ, उसने अपने रास्ते को, अपनी दूरी को मिटाने के लिए, रास्ते को आसान बनाने के लिए बहुत सी बड़ी बड़ी और शानदार गाड़ियां बना ली है ना, हवाई जहाज बना ली हैं, गाड़ियां, कार, बाइक, मोटरसाइकिल, इतनी जबरदस्त गाड़ियां, एक से बढ़कर एक। लेकिन इन गाड़ियों की वजह से क्या हो रहा है, वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है ना, हमारी जो हवा है वो प्रदूषित हो रही है, उसमें धुआं मिलता रहता है इन गाड़ियों को, और वो प्रदूषित होती है। तो एक दुरुपयोग हो गया वाहनों के प्रयोग से, सुविधा तो हुई है लेकिन वायु प्रदूषण बढ़ गया है। दूसरा, जैसे कि विज्ञान जो है ना, उसने हमें अंग प्रत्यारोपण भी सिखाया है ना, जैसे कि क्या होता है कि आप किसी के हाथ नहीं है तो कोई किसी ने हाथ दान किया तो आप हाथ लगवा सकते हैं, या लोग अपने नेत्र दान करते हैं, जैसे कि अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो कुछ समय तक अगर उनकी आंखें निकाल ली जाएं तो उन आंखें काम करती हैं, और तभी किसी अगर अंधे व्यक्ति के वो आंखें लगा दी जाएं तो उसके लिए जीवन भर रोशनी का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन अब लोगों ने इसका क्या फायदा उठाना शुरू किया है कि वो किसी के भी अंग जबरदस्ती बेचने लगे हैं, ये व्यापार बनने लगा है। जैसे किसी को ऑपरेशन हो रहा है तो उसकी किडनी निकाल ली, है ना, जैसे दो किडनी होती है लेकिन एक किडनी पे भी व्यक्ति जीवित रह सकता है, तो एक किडनी निकाल दी और फिर वो किडनी बेच दी। तो ये सारी चीजें क्या है, दुरुपयोग। तीसरा, कंप्यूटर का आविष्कार, ये भी विज्ञान की देन है ना, कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, हमें कितनी सुविधा हो गई, आज कोई भी चीज़ हम आसानी से ढूंढ लेते हैं, एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, हमारे कार्यों का जो बोझ है वो हल्का हो गया, कोई भी कठिन काम आसान होने लगे हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ है, साइबर क्राइम होने लगे हैं ना, किसी के बैंक अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, उसका सारा पैसा चला जाता है, या फिर लड़कियों को परेशान किया जाता है, तो ऐसी चीज़ों से नुकसान भी बढ़ रहे हैं। एक और चीज देखिए, चौथी चीज, अल्ट्रासाउंड है ना, विज्ञान ने एक चिकित्सा के क्षेत्र में तरक्की की अल्ट्रासाउंड की, कि आपको पता चल जाता है कि कोई माता यदि गर्भवती है तो उसके गर्भ में शिशु कैसा है, लड़का है लड़की है, उसके ग्रोथ कैसी है, ना सही रूप से विकसित हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई बीमारी तो नहीं है, ये उसकी दिल की धड़कन सही से चल रही है नहीं चल रही है, सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो ये इस चीज़ की जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड बनाया गया था कि आप देख सकें आपका बच्चा गर्भ में सही स्थिति में है या नहीं। लेकिन अब लोग उसको क्या करने लगे हैं, जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है उसके लिंग की जांच करवाते हैं कि वो लड़का है या लड़की, और अगर लड़की होती है तो कई बार उसकी गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। तो ये जो कन्या भ्रूण की हत्या के मामले बढ़ रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं विज्ञान का दुरुपयोग ही है। आखिरी देखिए एक बड़ी चीज, सारे देश लगभग क्या कर रहे हैं, परमाणु अस्त्र बना रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं, है ना। लेकिन क्या ये चीज सही है, ये हमारे लिए खतरनाक साबित नहीं हो सकती है। अगर युद्ध हुए तो परमाणु बम एक दूसरे पे फेंके जाएंगे। एक परमाणु हमला हुआ था, अणु हमला हुआ था जापान पे, जिसको वो आज तक झेल रहा है, कई कई सौ साल हो गए लेकिन आज तक वो झेल रहा है। और अगर ये परमाणु बम और ताकतवर हो गए और देशों ने इधर उधर फेंके तो क्या स्थिति होगी, सोचिए, है ना, पूरी की पूरी धरती ही एक तरह से नष्ट हो सकती है। इसीलिए ये भी विज्ञान के दुरुपयोग है कि हम विज्ञान को अस्त्र शस्त्र हथियार बम ये सारी चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। अब आप अंतिम प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 8। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है। क्योंकि बच्चों आप अब अपनी युवा अवस्था की ओर पहुंच चुके हैं, है ना, आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, अपनी जिम्मेदारी समझनी है, क्योंकि देश का भविष्य कौन होता है, हमारे युवा होते हैं, है ना, युवा पीढ़ी, आप ही लोग हैं देश का भविष्य। तो इसीलिए आपको समझना होगा कि आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है इस दिशा में। आप ये जो विज्ञान का दुरुपयोग है क्या इसको रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपकी क्या भूमिका हो सकती है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, बतौर इस देश की युवा पीढ़ी और जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हमारी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि वास्तव में आज विज्ञान का सदुपयोग से ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, है ना, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर ही रहा है। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो जिम्मेदार हैं, अपने कर्तव्यों को समझते हैं और विज्ञान के दुरुपयोग को रोकने में कोई ना कोई योगदान देते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि लगभग सारे देशों के पास, अभी बात की थी हमने, परमाणु बम बन रहे हैं, अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं, हथियार बन रहे हैं, लेकिन ये जो परमाणु संधि हैं इन्हीं की वजह से ये जो हमले हैं वो नहीं होंगे, है ना। परमाणु संधि की गई है कि कोई भी देश किसी पर भी इतनी जल्दी परमाणु हमला नहीं करेगा, और इस संधि की वजह से, वरना क्योंकि एक देश को नहीं नुकसान सारे देशों को पहुंचेगा, पूरी धरती को पहुंचेगा, इसलिए संधि की गई है कि कोई भी देश किसी पे परमाणु हमला बिना वजह नहीं करेगा। तो ऐसी संधियों को हमें समर्थन करना चाहिए। प्रदूषण के प्रति खुद भी जागरूक होना चाहिए, लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। आप ना सबसे पहले अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं, अपने घर परिवार में समझाइए, दोस्तों को समझाइए, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, फिर छोटी छोटी सभाओं का आयोजन करें जिसमें लोगों के विचार सामने आए, तरीके सामने आए कि कैसे कैसे प्रदूषण को रोका जा सकता है ना। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, है ना, पेड़ लगाएं, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, एसी कूलर जरूरत हो उतना इस्तेमाल करें, जिस भी चीज से प्रदूषण होता है उसको कम करने की कोशिश करें, नदियों को गंदा ना करें, पानी को स्वच्छ रखें। ये छोटी छोटी चीजें आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देश को अच्छा बनाने में या प्रकृति को स्वस्थ बनाने में मदद कर सकती हैं। अंग प्रत्यारोपण की बच्चों जो हमने बात की थी कि किसी के अंग को यहां वहां लेके बेच देना, उसे मीडिया की वजह से काफी उस पर रोक लगी है ना। मीडिया ने कई स्टिंग ऑपरेशंस किए थे, दिखाया गया था कि कैसे कुछ डॉक्टर्स या कुछ व्यापारी मिलके कुछ लोग धंधा बना लेते हैं, अंगों को बेचने लगते हैं ना, किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंग को बेच देते हैं। तो आपको भी इसमें उनका साथ देना होगा। कुछ बच्चे आगे आप में चाहें तो अपनी पढ़ाई पूरी करके मीडिया में नौकरी कर सकते हैं, है ना, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, और नहीं करें तो कम से कम मीडिया का साथ दे सकते हैं। अगर आपको किसी गतिविधि या किसी ऐसी बात की जानकारी मिलती है जो सही नहीं हो रहा है आपके आसपास, तो उसकी जानकारी आप मीडिया को, कानून को, पुलिस को दे सकते हैं। अपने आसपास कुछ भी गलत होता हुआ देखें तो उसको कभी सही नहीं बल्कि पुलिस को, मीडिया को जानकारी दें, ठीक है। इस तरह से आप ऐसे कुछ प्रयास करके अपनी ओर से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका पाठ तो पूरा हो जाता है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 46 पे देखिए, तो यहाँ आपको एक कविता दिखेगी, हिरोशिमा। ये वही कविता है जिसके बारे में लेखक ने इस पाठ में चर्चा की है। लेखक ने बताया है ना कि कैसे उनको अनुभूति हुई और उन्होंने एक हिरोशिमा के जो विस्फोट थे उस पर कविता लिख दी। तो देखिए, पढ़ते हैं क्या है। असल में सन 1959 में प्रकाशित अरी ओ करुणा प्रभामय काव्य संग्रह में संकलित अज्ञेय की हिरोशिमा कविता यहाँ दी जा रही है। 1959 यानी 1959 में अज्ञेय जी का एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था अरी ओ करुणा प्रभामय। काव्य संग्रह क्या होता है, जिसमें बहुत सारी कविताओं को संग्रहित किया गया हो, इकट्ठा किया गया हो। उसी की एक कविता थी हिरोशिमा, जिसका जिक्र, जिसके बारे में हमने यहाँ इस पाठ में पढ़ा। तो आइए देखते हैं ये कविता लेखक ने कैसी लिखी। इससे आपको समझ में आएगा कि क्या अनुभूति उन्हें हुई होगी, क्या उन्होंने महसूस किया होगा, क्या दर्द उन्होंने वहां देखा होगा जो उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। ये क्या है, इन्होंने बम धमाके का यहाँ पे विवरण किया है ना। सूरज निकला यानी कि रोशनी हुई, क्षितिज पे नहीं, क्षितिज पे सूरज निकलता है वहां नहीं। क्षितिज क्या होता है, जहां हमें लगता है ना, जहां तक हमारी नजर आखिर तक जा सकती है कि धरती और आसमान जहां मिल रहे हैं वहीं पे लगता है ना सूरज निकलता हुआ, तो वहीं पे सूरज नहीं निकला आज नगर के चौक पे, यानी शहर के बीचों बीच निकला। धूप भी निकली लेकिन अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। जब मिट्टी से बॉम्ब फटा, मिट्टी में ऐसे चमक हुई होगी ना, तो उन्होंने कहा धूप निकली लेकिन मिट्टी से। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगाता पूरब में, वह बरसा सहसा बीचो बीच नगर के, काल्य सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हूँ दये दशो दिशाओं में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी हुई सड़कों की गच पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। तो क्या उन्होंने बताया यहाँ पे, जो सूरज है वो उन्होंने बम के धमाके को बताया है ना, कि जो सूरज था वो पूरब में नहीं उगा था बल्कि अचानक से ऐसी बरस गया था और काल रूप में इधर उधर फैल गया था। कुछ क्षण का यानी उदय हुआ और अस्त हो गया, सूरज तो पूरे दिन रहता है लेकिन वो बम धमाके कुछ ही पल के थे, कुछ ही क्षण के थे, तो उदय हुए अस्त हुए, लेकिन उसके जो प्रभाव थे वो अंतकाल तक चले, बहुत लंबे समय तक चले। जो छायाएं थी मानव जन की यानी लोगों की जो छायाएं थी, परछाई थी, वो नहीं मिटी थी। मानव भले भाप हो गए यानी उड़ गए, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन वो छाएं अभी भी झुलसे हुए जले हुए पत्थरों पर, सड़कों पर, यहाँ वहां देखने को मिल जाती हैं। और आप अगर अंतिम इसका पैराग्राफ देखेंगे तो आपको बहुत ही आपको छू जाएगा ये, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। यानी परमाणु बम, अणु बम, ये क्या है, मानव नहीं तो रचे हैं, तो ये सूरज क्योंकि उन्होंने बम को कहा है, तो मानव का जो रचा हुआ सूरज है वो मानव को ही भाप बनाकर सो गया, यानी एक मानव ने दूसरे मानव पे धमाका किया और वो उड़ गया। पत्थर पर लिखी हुई ये जली हुई छाया यानी पत्थर पे जो छाया छपी है, जो लिख गया है इस पूरे दुष्परिणाम का, वो मानव की साखी है। यानी अब ये मानव की साथी हो गई, उसकी मित्र हो गई। आपको अगर आप ऐसे विज्ञान का दुरुपयोग करेंगे तो ये सारे परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही एक गहरे भाव वाली कविता हमने अज्ञेय जी की पढ़ी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अनुभूति महत्वपूर्ण होती है लिखने में, उन्होंने कितना कष्ट वहां महसूस किया होगा जो उन्होंने ये लिखा। ठीक है, तो यहाँ आपका पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।